ओम शांति। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली हरियालियां लहकती आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, सागर संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी। कवियों ने कल्पना की है, सोचा है कि ये जो देश है कोई साधारण देश नहीं है, यहां कुछ था कुछ है, उसकी स्मृति अभी भी है। क्या कहा? मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है। प्रकृति कैसी है? यहां पर बहुत ही मनभावन प्रकृति है। ऐसी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, सुख स्वर्ग अभी यहां है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, एक तरफ जिसके पैर सागर धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, नदियां वहां अमृत की धारा बहा रही है, वह देश कौन सा है? सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले, जिसके फल कैसे हैं? रसीले कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसके प्रसून अर्थात फूल पुष्प कैसे है? बहुत सुंदर है, वह देश कौन सा है? दिन रात हंस रहे हैं वो फूल, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में क्या हो रहा है? हरियालियां लहकती लहरा रही है हरियालियां आनंदमयी जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि। भारत क्या है? संसार का गुरु है, संसार का शिरोमणि है। जो अभी अभी पंत प्रधान का भाषण हुआ था 15 अगस्त का, उसमें उन्होंने सुब्रमण्यम भारती दक्षिण का जो कवि है उसको कोट किया था मोदी जी ने, और उस कवि ने कहा है कि भारत एक ऐसी शक्ति बनेगा, भारत एक ऐसा पावर बनेगा एक दिन कि जितने देश है बाकी सबको भारत से मदद लेनी पड़ेगी और बाकी सभी देशों का उद्धार भारत के द्वारा होगा। भारत की ऐसी महिमा है। तो जिसके बड़े रसीले फल कंद प्याज सब कुछ मेवे है, जहां पर सुंदर नदियां है जहां पर, वो भारत है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा बाप भारत में आते हैं, बाप का जन्म भारत में होता है, इसीलिए सभी धर्म वाले बाप को मानेंगे क्योंकि वो भारत में आता है। परंतु इसलिए भारत का इतना ऊंचा नाम है, परंतु नाम अब उड़ गया है, वो आगे की बातें हैं। तो कल जो मुरली चली अव्यक्तवाणी, उसमें बाबा ने बहुत सी बातें कही है सतयुग के विषय में, स्वर्ग के विषय में। सबसे पहले तो ये कहा कि उन संस्कारों का आह्वान करो, उन संस्कारों को कैच करो, और उसमें दो चीजें हैं। पहले तो अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको ऐसे अनुभव होगा कि हम कौन हैं? शहजादे शहजादी। और दूसरा ये होगा कि तुमको लगेगा ये कल की बात है, कल हम थे आज हम यहां हैं, बीच का जो पीरियड है वो है ही नहीं, हम कल ही देवता थे और अभी ये है। इस संस्कारों को इमर्ज करने से ये दो बातें होगी। संस्कारों को इमर्ज कैसे करें, उसमें एक बात बताई बाबा ने कि कि सोचो, क्या सोचो, क्या सोचो, बुद्धि के सुख, मन के सुख, आत्मा के सुख, प्रकृति के सुख, संबंध के सुख क्या है, ये सोचो तो सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे. हाउ टू कैच, वो जो संस्कार है सतयुग के कैसे कैच करें. कई बीच में किसी ने ये प्रश्न पूछा था प्रश्न उत्तर में, और ऐसे भी पूछा था कि वो जो सतयुग वाले संस्कार है वो हम कैसे कैच करें. उसका एक उत्तर मुरली में कल पापा ने दिया, तो ऐसे टोटल 8 उत्तर है, वो हम अभी देखेंगे. सतयुग के संस्कारों को कैसे कैच करें, सतयुग के संस्कारों को कैसे इमर्ज करें, सतयुग के संस्कारों का कैसे आह्वान करें. और सतयुग के विषय में बाबा ने 8 दूसरी और बातें बताई है. पहले तो ये देखेंगे कि सतयुग के संस्कार इमर्ज कैसे करेंगे. एक उत्तर बाबा ने खुद दे दिया है, थिंक, सोचो. क्या सोचो, क्या सोचो, बुद्धि का सुख क्या है, मन का सुख क्या है, आत्मा का सुख क्या है, संबंध का सुख क्या है, प्रकृति का सुख क्या है. तो सोचने से सतयुग के संस्कार कैसे इमर्ज होंगे, सोचने से. हम सोचे, उसके भी पहले एक स्टेप है, इसको 2 नंबर पे रखो. नॉलेज, ज्ञान चाहिए ना, सतयुग का ज्ञान. उसके लिए 2 किताबें हैं, 2 मुरलियां हैं, 2 किताबें हैं. मुरली है 2 जनवरी 1980, 7 जनवरी 1980, 2 मुरलियां सतयुग के ऊपर है. 2 किताबें हैं, एक किताब है स्पार्क की बुक, स्वर्ग नाम की, जिसमें पूरा संकलन है सतयुग की जितनी पॉइंट्स अब तक की मुरलियों में है वो, और दूसरी किताब है स्पार्क की ही सतयुग का दिग्दर्शन, जिसमें चिंतन करके लिखा हुआ है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, सब कुछ लिखा है डिटेल में. तो ऐसी है 2 मुरलियां और 2 किताबें सतयुग के बारे में. तो सबसे पहले तो जानो वहां क्या है, नॉलेज, सतयुग का नॉलेज. सतयुग में ये होता है, हमको पता ही नहीं तो हम कैसे उसके ऊपर सोचेंगे. पहले पता चाहिए, तो इमर्ज करने के लिए, सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान, दूसरा चाहिए सोच, सोचना, विचार करना. अब उसके ऊपर जैसे हमें नॉलेज मिल गया वहां पर पुष्पक विमान ऐसे होगा, तो अब हम सोचे कि और कैसे हो सकता है पुष्पक विमान. पहले नॉलेज, तीसरा विजुअलाइजेशन, मानस चित्र, मन की आंखों से देखना सतयुग को, क्या होगा, कैसे होगा वो राज दरबार, क्या होगा. अच्छा ये बताओ, उस राज दरबार में चर्चा क्या हो रही होगी सुशील भाई जी, राज दरबार में चर्चा क्या हो रही होगी सेजल बेन, क्या चर्चा हो रही होगी, आज कहां पिकनिक में जाएंगे, राइट, और भोजन आज क्या बनाना है, आज शाम का मनोरंजन का प्रोग्राम है उसमें किसको इनवाइट करना है, मोर को, पंछी को, पक्षी को, नया मकान बनाना है, महल, वो कैसा बनाना चाहिए, नया पुष्पक विमान ऑर्डर करना है तो सिंगल वाला होना चाहिए, फैमिली वाला बनाना है, डिजाइन कैसी होगी, ये सभी चर्चा करेंगे. दूसरा है क्या चर्चा करने के लिए, क्या करेंगे, रासविलास कब करेंगे, घूमने कितने बजे जाना है, तो ये सारी चर्चा वहां कहां होगी, वहां की दूसरी, वहां समस्या तो है ही नहीं, राजा महाराज क्या चर्चा करेंगे, यही चर्चा करेंगे नेक्स्ट मीटिंग कहां करनी है और कौन सी नई डिजाइन लानी है, कोई नया इन्वेंशन किसी ने अगर किया है तो बताओ, सोचेंगे नई नई चीजें, सोचेंगे नया गार्डन का प्लानिंग करने आए, कौन से टापू में घूमने जाना है, संगीत के बारे में कौन सा नई धुन, नया ताल, नई मात्रा, नया अलंकार, नया गीत, नया कौन सा फल आया है मार्केट में, मार्केट क्यों नहीं होगा, फिर लेंगे कहां से, मार्केट होगा ना, खेती होगी, खेती में घूमने जाएंगे, हाँ बगीचे में घूमने जाएंगे, खेती होगी वहां, कहाँ है, होगी नहीं, होगी खेती होगी, प्रोफेशन होगा, होगी खेती होगी। और तो विजुअलाइज करना अर्थात देखना, तो सतयुग के संस्कार कैच करने के लिए तीसरी पॉइंट है विजुअलाइजेशन। नहीं वहां तो हीरे नेचुरल होंगे, हीरे गिरेंगे ऊपर से। उसका एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि कैसे यहां पे जो कोल है कहां से बनता है, वो सारा कोल ऊपर जाएगा, धरती का एक्सिस चेंज होगा सतयुग में, और फिर वो नीचे गिरने लगेंगे ऊपर से। हाँ रोज, वो अभी देखना पड़ेगा, रोज गिरेंगे या एक ही बार में गिरेंगे धीरे धीरे गिरेंगे या थोड़े थोड़े गिरेंगे या आह्वान करने के बाद गिरेंगे हीरे, कैसे गिरेंगे वो तो खुद ही जाके देखेंगे। हाँ अच्छा, दूसरा प्रश्न, देवी देवता चप्पल पहनेंगे क्या, किसी ने प्रश्न पूछा था। हाँ पहनेंगे, मखमल वाले, हम अपने चित्र में तो दिखाया नहीं है हमने। तो विजुलाइज करना तीसरा। चौथा, अभी चित्रों को देखना जाकर, सीइंग पिक्चर्स, जो चित्र बने हुए हैं सतयुग के उनके सामने जाके बैठ जाना, लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाना, कृष्ण का चित्र है वहां जाके बैठ जाना। मंदिर की जरूरत ही नहीं है वहां पे, जगह इतनी ज्यादा है। अच्छा चित्र में दिखाया है, पार्टीशन है, मंदिर की जरूरत ही नहीं है वहां पर, वहां तो एक ही कितना बड़ा घर है, एक एक घर माउंट आबू के इतना होगा। तो चित्रों को देखना स्थूल नेत्रों से, ये चित्र देखना, और तो वो सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे। उसके बाद में पांच स्वरूपों का अभ्यास, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना, रूहानी ड्रिल करना, तो वो सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे और हम फिर से कैच करने लगेंगे। जैसे पुनर्जन्म में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है उसका खून कर दिया किसी ने, दूसरा जन्म हुआ, अब उसको बचपन से यादें रहती है थोड़ी सी, या फिर उसको दिखने लगता है, वो सबको नहीं होता है, किसी किसी को जब गहरी स्मृति होती है, आघात पहुंचता है किसी को बहुत जबरदस्त, तो वो स्मृतियां जागती है। एक दूसरा टॉपिक हम दे रहे हैं श्याम भाई फ्राइडे के लिए, और डॉक्टर हीना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन डॉक्टर हीना, और श्याम भाई आपको बोलना है 12 साइंस जो ये प्रूव करे कि पास्ट लाइफ होती है, इसकी 12 साइंस है, 12 साइंस दैट पास्ट लाइफ एग्जिस्ट्स, पुनर्जन्म होता है उसकी। एक साइन आपको बता रहे डेजा वो फिनोमिना, एक साइन होती है रिकरिंग ड्रीम्स, बार बार स्वप्न आ रहे हैं, वही वही चीज दिखता है स्वप्न में, सामने देखो तो बाहर कुछ भी नहीं है। ये दो साइंस है, ऐसी 12 साइंस है टोटल पास्ट लाइफ प्रूफ की। और दूसरा उनको दे रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अर्थात जाति स्मरण कैसे करना, उसकी भी एक विधि है अपनी, कैसे वो टनल क्रिएट करना, जैसे एक टनल है वहां दरवाजा है, और देखना कि मैं जा रहा हूं, और फिर दरवाजा खोलते ही दूसरा जन्म उधर है पीछे, ये ऐसी मेथड्स है। तो ये फ्राइडे के लिए आप दोनों का तो कहां थे, रूहानी ड्रिल, रूहानी ड्रिल जितना ज्यादा करते रहेंगे यहां, क्योंकि है तो सब यही, सब कुछ रिकॉर्ड है यहां पर, वो इमर्ज होगा, बार बार याद करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे, तो वहां पर जो बीच के लेयर्स है सारे थिक लेयर्स, वो सारे हटते जाएंगे, वो परते, और वो पुरानी स्मृतियां सतयुग की जागृत हो जाएगी। एक बार वो जागृत हो गई तो सब सहज है, फिर तो हम ही थे, कल की बात है, सारे दिव्य संस्कार अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे। तो अगली विधि बताई रूहानी ड्रिल, उसके बाद है स्वमान, नेक्स्ट स्वमान, स्वमान का अभ्यास, मैं देवकुल की आत्मा हूं, मैं सतयुग का शहजादा हूं, शहजादी हूं, मैं सतयुग में विचरण कर रही हुई आत्मा हूं, मुझ में देव संस्कृति के संस्कार है, मैं देव आत्मा हूं। बार बार सोमान, बार बार याद दिलाना खुद को, मैं देवता था, मैं देवता हूं, मैं देवता बन रहा हूं। बार 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 स्मरण दिलाना खुद को। शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रः, मैं अमृत की संतान हूं। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु, जो देवता है उनमें जो प्रकाश है वो मुझ में है। स्मरण दिलाना खुद को। तो सोमान। नेक्स्ट योग निद्रा। नेक्स्ट मेथड है योग निद्रा। कितना लोग अभ्यास कर रहे हैं योग निद्रा का रोज? थोड़ा थोड़ा नहीं, रोज करना है। जीवन बदल जाएगा, नींद ही बदल जाएगी। रात को सोना, पूरी एक क्लास हुई है उसके ऊपर उस दिन, आर्ट ऑफ योग निद्रा। सोना अर्थात योग निद्रा करते हुए ही सोना है, इधर उधर हाथ रख के नहीं। जैसे शवासन में लेटते हैं वैसे लेटना, फिर पैर की उंगलियों से चालू करना, पहले दाएं पैर की उंगलियां, दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का टखना, दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर का जांग, पूरा दाया पैर शिथिल, फिर बाएं पैर का चालू करना, फिर उंगलियों का चालू करना, उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधे, फिर दोनों हाथ, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ और फिर आंखें। पहले फर्स्ट स्टेप शिथिलीकरण, पूर्ण शिथिल कर देना। फिर नेक्स्ट स्टेप, आठ स्टेप बताई थी उस दिन। फिर संकल्प लेना एक, मैं आत्मा परम धाम में हूं। क्या संकल्प लेंगे? मैं आत्मा परम धाम में हूं, सीधा परम धाम में हूं, वो कमरा मेरा परम धाम बन गया है। फिर उसके बाद में श्वासों के ऊपर ध्यान, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन, सतयुग का भी ले सकते हैं संकल्प कि मैं सतयुग में हूं, तो सतयुग का विजुअलाइजेशन करना चालू करना। फिर चेतना को पूरे शरीर में घुमाना धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलती है, पर उठेंगे दो घंटे के बाद, और दो घंटे के बाद ऐसा लगेगा हो गया, नींद पूरी होगी। क्योंकि मेन तो जो होता है वो 90 मिनट्स का साइकिल होता है, आरईएम, आरएम, रेम, वो जो स्लीप है। आधा टाइम तो ड्रीम्स में वेस्ट होता है, आधा टाइम व्यक्ति वेस्ट करता है सारे स्वप्न देखने में यहां वहां के। मेन जो नींद हो जाती है वो तो बस वही पीरियड में होती है। तो योग निद्रा और एक ही होता है सबका, वो स्टार्टिंग वैसा ही होता है। दो प्रकार है उसमें, एन आरियम, आरियम, आरियम अर्थात रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मतलब आंखें वहां घूमती रहती है अंदर ही अंदर, मतलब स्वप्न देख रहा है व्यक्ति। एन आरियम मतलब जहां पर आंखें घूम नहीं रही है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जहां पर तीन स्टेजेस है, N1, N2, N3। N3 जो है सबसे डीप स्लीप है। N3 में पहले हम जाते हैं N1 से N2, N3। यहां से जाने के बाद पहुंचते हैं REM में, REM अर्थात स्वप्न। फिर यहां से फिर NREM चालू होता है, एक के बाद एक ऐसे साइकिल पूरा होता है। तो योग निद्रा में किसका अभ्यास करना? सतयुग का। तो वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे सतयुग के। देवता शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवता सोते नहीं, योग निद्रा करते। योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है कि जिसमें धीरे धीरे नींद को जीतना जो है ना, वो योग निद्रा है। नहीं तो 8 घंटा भी सो लो, व्यक्ति फ्रेश नहीं महसूस करता है। 6 घंटा भी सो के उठता है, नींद को कम नहीं करना है। योग नींद को जीतना अर्थात नींद को कम नहीं कर देना, वो करना ही नहीं है। कम नींद में ज्यादा से ज्यादा हमको प्राप्ति हो जाए। 45 मिनट्स नींद किया, योग निद्रा किया, उठने के बाद ऐसा अनुभव हो कि जैसे 3 घंटा नींद हो गई, अब जरूरत ही नहीं है, हो गया, ऐसा अनुभव होगा। तो योग निद्रा करते करते किसका अभ्यास? क्योंकि योग निद्रा में सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, दो ही टाइम खुलता है, एक सुबह एक रात को। बीच का जो बैरियर है वो ऊपर उड़ जाता है। तो यहां जो जो संकल्प डालेंगे सीधा अंदर चले जाते हैं सबकॉन्शियस में। जो हैबिट से छूटना है, एडिक्शन से छूटना है, पुरानी कोई एक ऐसी आदत है कि जो नहीं छूट रही है, उसका अभ्यास योग निद्रा में करना। वो आदत मुझसे छूट रही है, मैं उससे मुक्त हूं, तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बाकी टाइम हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, विचार चालू रहते हैं। यहां विचार नहीं, धीरे धीरे वो निर्विचार में प्रवेश करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार जिसको कर लेता है वो तो सीधा एक्ट हो जाता है साकार। तो योग निद्रा एक विधि है। किसकी विधि चालू है ये आशीष भाई? सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने के लिए। कितने हो गए? 7। तो सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने के लिए ये 7 बातें रोज करनी है। ड्रिल करना, समान का अभ्यास करना, योग निद्रा करना, विजुअलाइजेशन करना, ज्ञान बढ़ाना, चित्रों को देखना, उसके विषय में सोचना। सोचना अर्थात चिंतन करना, मनन करना। कैसे मनन करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा वहां का, मनन कैसे करेंगे? भोजन क्या खाएंगे, दिनचर्या कैसी होगी, उठेंगे कितने बजे, सोएंगे कितने बजे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कैसा होगा, बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पूरी बातें ये सोचना, चिंतन करना। रो ऐसी कोई मुरली है कि जिसमें स्वर्ग के विषय में नहीं आया है? आया है ऐसे कोई? शायद ही कोई मुरली होगी। हर मुरली में वर्षा आता ही है, हर मुरली में स्वर्ग आता ही है। तो वो क्या है, खाली वर्षा वर्षा बोलने से नहीं होगा। कैसा होगा वो, क्या होगा वो, भूगोल, उसके हिस्ट्री क्या होगी, इतिहास क्या होगा, राज्य कैसे होंगे, वो सारा सोचना अर्थात उसको इमर्ज करना। तो ये ऐसी 7 बातें। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे गीत सुनना उससे रिलेटेड, जैसा चर्चा करना उसके विषय में, जैसा ड्राइंग बनाना उसके विषय में। निखिलेश भाई, उसके ड्रेस पहन के कहां, क्या कहां जाएंगे? ड्रेस होना भी तो चाहिए, वो रात को ड्रेस पहन के सोनेगा। तो ड्रेस, तो एक तो ड्रेस हो गया, और ये आपस में देवता कैसे बात करते, कौन सी भाषा होगी, देवता जैसे चलने का कैसे, ऐसे पुकारना, श्याम देवता जी, देवेंद्र देवता जी, हर समय फुल मून, प्रकृति कैसी होगी, पहाड़ कैसे होंगे, वो सब कुछ संतुलन में होगा वहां पर, सदाबहार मौसम होगा। तो भाषा, रिचुअल्स, फेस्टिवल, त्योहार, ये सब कुछ कैसा होगा, इसके विषय में सोचना। ये सोचना जो है चरण मनन करना, सतयुग कैसा होगा। तो ये सारी चीजें है, किस लिए? सतयुग के संस्कार कैच करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके पहले कौन सा जन्म था वो याद नहीं है। और बीच का डिस्टेंस, और उसमें भी कितने सारे हैं, उधर 8 और फिर 12, याद करने हैं इतने सारे जन्म, तो पूरा पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो वो जो हिप्नोटिक रिग्रेशन होता है, उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी कि एक जगह बैठ जाओ, देखो कि एक हॉल है, ऐसा वे, मतलब जिसको क्या कहते हैं, कॉरिडोर, एक हॉलवे है और एक दरवाजा है एकदम पीछे, और मैं यहां हूं, और मैं अभी इमेजिन करते जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, या जा रहा हूं आगे आगे आगे, जीवन की एक एक घटनाएं दिखती जा रही है, बचपन की और आगे, फिर बचपन में पहुंच गया, फिर मां के गर्भ में पहुंच गया, अब मां के गर्भ में जो हूं तो वहां दरवाजा है, आप दरवाजा खोलो, और दरवाजा खोलते ही दूसरा जन्म उधर है, फिर देखो, फिर घबराना मत, अगर याद भी आ गया तो फिर तो उधर का सारा दिखने लगेगा, फिर वो जन्म का, ये जन्म के पहले के जन्म का। तो वैसे ही दिस इज अ हिप्नोटिक रिग्रेशन, इसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये सारी मेथड से, अभी सतयुग के बारे में बाबा ने 8 बातें बताई है, कौन कौन सी? सबसे पहली है चीजें, कैसी होगी वहां की चीजें, मुरली से बताओ, चीजें कैसी होगी, सुखदाई, चीजें कैसी होगी, संपन्न, चीजें कैसी होगी, भरपूर, वहां की चीजें सब कुछ अच्छा होगा, वहां का धन, वहां की प्रकृति, वहां का शरीर, चीजें, सबसे पहले चीजें फर्स्ट क्लास। हाँ, चीजें में फर्नीचर से लेके सब का आता है। बाबा फर्नीचर को बहुत याद करते हैं, फर्नीचर फर्स्ट क्लास होगा उधर का, गैया भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी। और दूध का क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर से दूध लेके आएंगे। तो सबसे पहली चीज है चीजें, तो वस्तुएं वहां की कैसी होगी उस पर हम आगे और चिंतन कर सकते। पहाड़ कैसे होंगे, पक्षी कैसे होंगे, पक्षी के अलग अलग प्रकार होंगे, पक्षियों को भी गहने वगैरह चढ़ाएंगे, हीरे मोती। कुछ कुछ पक्षी नाचने वाले होंगे, कुछ गाने वाले में स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ महल के अंदर होंगे, कुछ महल के बाहर होंगे, कुछ थोड़े जंगल में होंगे। पुष्पक विमान को ही हम अपनी भाषा में हेलीकॉप्टर कहते हैं क्या? अच्छा, पुष्पक विमान, ठीक है ठीक। तो उधर की भाषा इधर लानी है, उधर कैसे बात करेंगे? आप करके बात करेंगे, तू तू करके बात नहीं करेंगे, शुद्ध हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी। तो बात कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, घूमेंगे कैसे, फिरेंगे कैसे, दिनचर्या कैसी होगी, दोपहर को क्या करेंगे, रात को क्या करेंगे, सोएंगे कितने बजे, उठेंगे कितने बजे, स्वप्न में क्या दिखेगा देवताओं को, ये कभी सोचा है? स्वप्न होगा नहीं, कहां बोला है बाबा ने? दो घंटा नींद? अरे नहीं, वो तो आराम से नींद करेंगे, खाओ पियो। हाँ, 18 घंटे का रात। अच्छा, तो पहली चीज है चीजें, दूसरी चीज है परिवार। परिवार कैसा होगा, कौन से पॉइंट से परिवार की बताई ना आपने? सुखी परिवार होगा, सुखदायी परिवार होगा, संबंध कैसे होगा? ये नहीं होगा ये दासी है, ये दास है, ये ऐसा भाव नहीं होगा उधर। खुशनुमा जीवन होगा, हो गए, पर उनके अंदर ये नहीं होगा कि ये हम दासी है, ये राजा है, ये नहीं होगा। यह हीन भाव से, हेय भाव से उनको देखा नहीं जाएगा, समभाव होगा सबके लिए। हाँ, स्टेटस तो होगा, पर पद तो होगा, कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा, कोई साहूकार प्रजा, कोई साधारण प्रजा, वो सब होगा। दास, दासी, चंडाल, वो क्या करेगा? वो भी देवता ही होगा, फैमिली चंडाल। बॉडी को कैसे खत्म करेंगे? दुख, कोई दुख नहीं, कोई रोएगा नहीं, कोई आंसू नहीं, मरने से पहले साक्षात्कार हो जाएगा, यहां जाना है। आंखों के द्वारा नैनों का प्रेम क्या होता है? मुरलियों में आता है ना, नैनों का प्यार, नैनों का प्यार, दृष्टि से ही गर्भधारण होगा। और छोटा परिवार होगा, दो ही लोग होंगे उसमें, एक बच्चा एक बच्ची, पहला बच्चा होगा, 10 साल के बाद बच्ची होगी, मामा काका वो बहुत सारे रिश्तेदार नहीं होंगे। पॉपुलेशन कितनी होगी वो भी सोचना है, तो वो सारा सतयुग के विषय में। तो ये परिवार जो होगा कैसा परिवार होगा? संपन्न परिवार होगा, श्रेष्ठ परिवार होगा, खुशनुमा परिवार होगा, संबंध खुशनुमा होंगे। तो ये हो गई परिवार की बात है। उसके बाद में तीसरा, कारोबार। कारोबार कैसा होगा? जो बताया मधुबन में जैसा कारोबार है उस तरह का कारोबार होगा वहां पर। पैसे लेन देन नहीं होगी, पैसों की बार्टर सिस्टम होगा, एक्सचेंज होगा चीजों की। हाँ हाँ, अशर्फिया तो होगी, ले सकता है। उसके बाद में है तो कारोबार, उसके बाद में हिसाब किताब। वहां पर कोई हिसाब किताब नहीं, कोई अकाउंट्स नहीं रखेगा, क्योंकि इतनी चीजें भरपूर है वहां पर, इतनी ज्यादा चीजें है कि किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है किसी को, इतना सारा कुछ है। उसके बाद है संगम युग के लिए, बाबा ने कहा संगम युग क्या है? इकोनॉमी का युग है, वहां खाओ पियो और उड़ाओ। क्या करो उधर? खाओ पियो और उड़ाओ, मौजों का युग, संगम युग है। वो भी मौजों का ही युग है। तो इसमें और एक बात है जो हम भूल गए थे, जो सात बातें बताई इमर्ज करने के लिए, और एक आठवीं बात है कॉन्ट्रास्ट, तुलना। यहां की जो भी चीजें देखो उसको सतयुग के साथ जोड़ो। यहां का ये फर्नीचर ऐसा है, सतयुग में कैसा होगा? यहां का ये चित्र ऐसा है, सतयुग में कैसा होगा? यहां की ये पेंटिंग ऐसी है, सतयुग में पेंटर क्या करेंगे? यहां का सोफा, यहां की चीजें, यहां की वस्तु है, यहां के कपड़े, मतलब कॉन्ट्रास्ट मेथड। आठवां है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट, अच्छा तो यहां हम बात कर रहे थे कि फैमिली कैसी होगी, फिर उसके बाद में कारोबार कैसा होगा, और उसके बाद में दुकानों की खरीदारी, वही और एक पॉइंट है दुकानों की खरीदारी, एक्सचेंज, कारोबार भी वही पॉइंट है कि जैसे मधुबन में कारोबार है वैसे वहां कारोबार होगा, अनाज कपड़ा एक्सचेंज। और उसके बाद है इच्छा मात्रम अविद्या, नेक्स्ट पॉइंट इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा के वजह से गिरते हैं, बाबा ने कहा वहां किसी को कोई इच्छा नहीं है क्योंकि पेट भरा हुआ है, दिल भरपूर है, किसी को कुछ चाहिए नहीं, वहां पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, तो वहां इच्छा मात्रम अविद्या है। उसके बाद में वहां प्रकृति कैसी है, दासी है, नेक्स्ट पॉइंट प्रकृति दासी है। क्या मजाल जो तूफान आए सागर उछल खाए, मुरलियों में आता है जो सागर उछल खाए, तो सारे तत्व कैसे होंगे, सत्व प्रधान, सारे तत्व सहयोगी। मौसम ऐसे अचानक कभी नहीं बदलेगा, अचानक बारिश और अचानक कुछ, कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं होगी। अच्छा एक प्रश्न है कि सतयुग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग चालू होता है, तो त्रेता अंत और द्वापर की शुरुआत के बीच में क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो प्राकृतिक आपदाएं होना अर्थात दुख होना, फिर तो क्या देवताओं को दुख होगा? क्यों, त्रेता के अंत में देवता है, त्रेता के अंत में देवता है, लास्ट जनरेशन देवताओं की, त्रेता की अंत की, ठीक है, और उसके बाद में द्वापर चालू होगा, बीच में हलचल हो रही है, अर्थक्वेक, एक तो प्राकृतिक आपदाएं होगी, परंतु प्राकृतिक आपदाएं में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होगी और उस प्राकृतिक आपदा से क्या देवताओं को दुख होगा, ये दो प्रश्न है। वो सब है, सबसे इसका पहला उत्तर है प्राकृतिक आपदाएं सब प्रकार की नहीं होगी, एक ही प्राकृतिक आपदा होगी भूकंप। दूसरा, ये मुरली में आया, दूसरा कोई भी देवता को हानि नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पाप किए ही नहीं है, जो उनको हानि होगी वो घर टूट फूट जाएंगे, देवता सब रहेंगे ठीक, वो निकल जाएंगे वहां से और जो घर है वो भूकंप में नष्ट होंगे, पर उनको क्या दुख उनको खुद शारीरिक कोई आहत नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई इस तरह का कुछ नहीं होगा उनको, थोड़ा सा भक्ति, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो इतना थिन है कि जैसे ये लास्ट जन्म, वो कोई ऐसा एंड तो है नहीं, कोई पॉइंट तो है नहीं, जैसे द्वापर कब पूरा हुआ और कलयुग कब चालू हुआ उसका कोई पॉइंट है क्या? वो इतिहास तो हमारे पास है, क्या शंकराचार्य आया उसके बाद में द्वापर पूरा हुआ और कलयुग चालू हुआ ये कह सकते हैं या कब कह सकते हैं? बहुत कठिन है कहना। वैसा यहां पर भी वो जो ट्रांजिशन फेज है, अब यहां पर कोई राजा होगा जिसका नाम राम था, फिर उसकी पत्नी का नाम सीता था, एक रावण नाम का दूसरा राजा था, वो सीता को भगा के लेके गया, तो इन्होंने फिर नया रचना किया रामायण की। वैसे तो राम तो बहुत पहले था इधर, त्रेता शुरुआत में, राम वन राम टू राम थ्री वो जो भी है, तो राम जो लास्ट था, फिर नए शास्त्र बने यहां से, ऋषि मुनि आए, भाषा बनी संस्कृत, जो संस्कृत भाषा थी नहीं, पहले से हिंदी थी, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ। तो देवताओं को कोई हिसाब किताब नहीं है देवताओं के, इसलिए उनको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, अपने आप प्राकृतिक आपदाएं होगी पर वो बहुत सारी नहीं होगी जैसे अभी होती है, केवल भूकंप, और खंड जो है वो अलग अलग, पांच खंड थे या कितने खंड थे, पांच खंड तो हम जानते हैं अभी, कोई कहते हैं और कितने सारे खंड थे, वो तो एक लुमेरिया नाम का कॉन्टिनेंट था जो आज है ही नहीं, लुमेरिया नाम का, जो कि डूब गया अंदर, तो कितने खंड होंगे वो तो हमने गिनती की है, ये पांच खंड अभी भी जो है वो पांच नहीं, कोई कोई लोग कहते सात है, अमेरिका को हम एक मानो तो वो एक हो गया, उसको दो कर दो ऊपर और नीचे दक्षिण और उत्तर, तो कोई लोग एंटार्क्टिका को खंड मानते ही नहीं है क्योंकि वहां लोग नहीं रहते, उसको मानो तो सात हो जाएंगे फिर, और वैसे पांच पर वैसे सात। फिर कई कई लोग एशिया और यूरोप को एक कर देते, यूरेशिया, तो वो और कम हो जाते। ये तो हमारी गणना है खंड कितने हैं, तो वो सारी चीजें होगी। तो प्रकृति कैसी होगी, दासी होगी। उसके बाद इच्छा मात्रम अविद्या, और लास्ट है सतयुग में भगवान क्या करेगा, बाबा होगा। ये प्रश्न पूछा ना यहां पे, सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे। बाबा ने कहा सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना, बाप तो न्यारा ही रहेगा, फिर तुमको निकालेगा कौन जब तुम गिरोगे तो तुम गिरो तो मैं आके निकालू, क्योंकि उसको भी तो अपनी कॉलर टाइट तो उसको भी तो करनी है कि जब तुम पतित बनोगे तभी तो मेरा गायन होगा, पतित पावन, तभी तो मैं आऊंगा तुमको निकालने के लिए, नहीं तो मेरी महिमा कहां से होगी, क्योंकि महिमा का तो टाइम ही नहीं है पूरा 5000 वर्ष। लास्ट में आके मैं अपना पूरा अपना सिक्का जमाऊंगा ना लास्ट में आके मैं अपना वर्चस्व दिखाऊंगा कि देखो अब तक तुमने जो भी सुना है सब झूठ, अब मैं बताता हूं तुमको व्हाट इज राइट। तो उसको ये भी तो करना है। तो क्या कहा यहां बाबा ने, भोन्यारा रहेगा। हां पर यदि तुम संकल्प करोगे, बाप को तुम आकर्षित कर रहे हो सतयुग में, यह भी कहा है, यदि तुम संकल्प करोगे तो शायद वो आएगा, पर तुमको संकल्प इमर्ज होना चाहिए, तो बाप को भी उधर संकल्प इमर्ज होगा। कब, सतयुग में। हम तो हम ऐसा कर सकते हैं कि तो सतयुग में तो ड्रामा में है नहीं, क्या करे कि सतयुग में यहां की स्मृति रहे, ऐसा कुछ किया जा सकता है, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सबको नहीं, एक हाथ को, वो परमात्मा बन जाएगा। वो त्रिशंकु था, शास्त्रों में दिखाया था, वो दुखी इसलिए था कि उसको पूरा शरीर स्वर्ग में जाना था, शरीर के साथ विश्वामित्र के पास गया, नहीं वशिष्ठ के पास गया, मना कर दिया, वशिष्ठ के पुत्र के पास गया, मना कर दिया, दुखी हो गया, फिर आखिरी विश्वामित्र के पास, और विश्वामित्र ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, वो इसलिए नहीं क्योंकि वशिष्ठ ने मना की थी, इसलिए वशिष्ठ तो उसका दुश्मन है ना, तो उसको दिखाना था कि मैं इसको भेजूंगा शरीर के स्वर्ग के, वो यज्ञ करता है, यज्ञ स्वीकार नहीं होता है, फिर वो अपना नया अपने शक्ति से आधा तपो पर लगा देता है और उसको स्वर्ग भेजता है, वो स्वर्ग पहुंच जाता है, देवता उसको धक्के निकल नीचे फेंक देते, वो कहता है अब देखना मैं अब अपने सारे योग बल से नए स्वर्ग की रचना करूंगा, और वो त्रिशंकु को शरीर, वो पूरा त्रिशंकु बन जाता है, क्योंकि वशिष्ठ के बेटे ने उसको शाप दे दिया था, क्योंकि पिता ने मना किया, उसके बाद में बेटे के पास आता है पूछने के लिए विद द सेम प्रपोजल तो सशरीर उसके लिए नया स्वर्ग बना देता है विश्वामित्र। तो वो तो अहंकार की लड़ाई थी वहां विश्वामित्र की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसी शरीर के साथ, अब वो दिखाते हैं वो सारा, यह नहीं तो इसी शरीर के साथ यह शरीर यही चेंज हो जाएगा और स्वर्ग बन जाए
खत्म।
हाँ तो ऐसी ये स्वर्ग की कुछ बातें, कौन कौन सी बातें देखी, 8 बातें बताई। सबसे पहली तो चीजें, नहीं नॉलेज नहीं, वो तो इमर्ज करने वाली, ये सतयुग की नॉलेज, पहले तो चीजें, फिर परिवार, फिर यहाँ की खरीदारी कारोबार, यहाँ का हिसाब किताब, इच्छा मात्रम अविद्या, प्रकृति कैसी होगी, और भगवान आएगा कि नहीं आएगा सतयुग में। तो ये सारी सतयुग की बातें थी, 2 किताबें बताई, एक तो स्पार्क की किताब और दूसरी सतयुग का दिग्दर्शन जिसमें विस्तार चिंतन की किताब है, और 2 मुरलियां भविष्य का दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, ये 2 किताबें स्पार्क में अवेलेबल है, और 2 मुरलियां 2180 7180 2180 की मुरलियां, उसमें पूरा सतयुग का वर्णन है, 7180 की मुरली में कंपैरिजन है कि सतयुग संगम युग सतयुग से कैसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण देवताओं से कैसे श्रेष्ठ है, एक में कंपैरिजन है। तो सतयुग के संस्कारों को इमर्ज करने के लिए 8 बातें चाहिए, कौन कौन सी 8 बातें, सबसे पहला तो ज्ञान बढ़ाओ सतयुग के विषय में, दूसरा उसके बारे में सोचो चिंतन करो, तीसरा विजुलाइज करो उसको, देखो मन की आंखों से कि कैसा होगा, उसके बाद में चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ, उसके बाद में रूहानी ड्रिल करते रहो, पांच स्वरूपों का अभ्यास करते रहो, उसके बाद तीन स्वरूपों का अभ्यास, पांच स्वरूपों का अभ्यास, उसके बाद में स्वमान का अभ्यास, मैं कौन था, मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा, स्वमान। उसके बाद में योग निद्रा, रात को सोते समय, दोपहर में भी जो सोते हैं वो भी योग निद्रा में ही सोना है, आड़ा तेड़ा नहीं सोना है, इधर हाथ इधर हाथ नहीं, अभी आदत को बदलना पड़ेगा, आदत को बदलना पड़ेगा, कुछ नहीं। योगी जो होता है उसकी योगियों के जैसा नींद होनी चाहिए, वो दिखे तो योगी लगे, उल्टा तिल्टा नहीं सोना है, पैर इधर, एक पैर इधर लग रहा है माथे को या छाती को, या ऐसा सोतेगा, ऐसा सोते हैं हम, देखते हैं ना रोबोट्स में राउंड लेने जाते हैं तो पेशेंट सोए पड़े रहते हैं, जब राउंड जाते हैं तो उल्टा तिल्टा सोते रहते हैं, तो वैसा नहीं। तो योग निद्रा, और लास्ट मेथड बताई कॉन्ट्रास्ट, यहां की जो भी चीजें देखो, कुर्सी देखी तो चिमन भाई जी क्या सोचेंगे, सतयुग की कुर्सी कैसी रहेगी, हाँ उसको कुर्सी कहना तो बड़ा छोटा है, तख्त कैसा रहेगा, सिंहासन कैसे रहेगा, कैसे हाँ चश्मे की जरूरत, राइट, वहां पे अकाले मृत्यु नहीं, वहां बीमारी नहीं, वहां पर बुढ़ापा, बुढ़ापे जैसा, यहां जैसा बुढ़ापा है वैसा नहीं, दांत गिरेंगे नहीं, आवाज प्रेसबायोकोसिस होगा नहीं, वहां पर, वहां पर कुबड़ नहीं निकलेगा, बाल काले का, बूढ़ा और जवान कैसे पता चलेगा, ये प्रश्न है, तो सोचो ना, विजुअलाइज करो तो उसमें पता चलेगा तो सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए ये सारी चीजें करनी है, और रोज करनी है, और बार बार करनी है, क्योंकि ये जो अभ्यास है एक बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है वैराग वाला, ये संसार नष्ट हो रहा है, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है थोड़ा, ये संसार नर्क है, रव रव नर्क, कुंभी पाक नर्क, धधकती अग्नि है यहां पर, सब विकार है यहां पर, पाप आत्माएं है, ये एक चिंतन है, ये छीची पति, ये ऐसा एक चिंतन है, एक चिंतन ये है, खाली इसके बारे में सोचते रहे, देवता देवता विचरण कर रहे हैं, यहीं पर स्वर्ग देखना, ये नकी जो है ये तालाब है स्वर्ग का, ऐसा देखना। तो झील को देखो तो वो झील को याद करो, पहाड़ को देखो तो वो पहाड़ को याद करो, तो इस तरह स्वर्ग के संस्कारों को इमर्ज करना है, कैच करना है, दूरी बहुत है पर कैच कर सकते हैं, और बार बार अभ्यास करना है। तो ये कल की मुरली थी, ओम शांति।